सुनैना के भड़काने पर अंजलि अभिमन्यु को देखने के लिए राजवंश विला पहुंच गई। अभिमन्यु को सुरक्षित देखकर उसे मन ही मन काफी राहत महसूस हुई, लेकिन राजवंश परिवार ने अंजलि को वहां देखा तो वे हैरान रह गए। अंजलि का चेहरा देखते ही अभिमन्यु का मन फिर से कड़वाहट से भर गया। वो उससे दूर ही रहना चाहता था। अंजलि ने भी अभिमन्यु को देख लिया था तो अब उसके वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो वहां से जाना चाहती थी, पर अचानक हाउस हेल्पर ने आकर बताया कि बाहर हाई टाइड अलर्ट होने की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ था। मजबूरन अंजलि को वहीं पर रहना पड़ा। उन सबके अंदर जाने के बाद अंजलि और पार्थ अकेले थे, जहां पार्थ ने सीधे सीधे अभिमन्यु को बर्बाद करने की बात अंजलि को बता दी। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वो जानता था कि अगर अंजलि किसी के सामने चिल्ला चिल्ला कर सच बताएगी तो भी कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। पार्थ अंजलि के पास चलकर आया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब इस खेल में और मजा आएगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब मैं किसी की आंखों के सामने अभिमन्यु को बर्बाद करूंगा तो वो सच जानता भी होगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अभिमन्यु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अंजलि ने लाचारी से कहा। उसी ने बिगाड़ा है। शुरुआत तो आपसे हुई थी मिस चौहान, जब आपने मेरी मॉम की जगह लेकर प्रशांत राजवंश से शादी की थी। आपके जाने के बाद आपके बेटे की वजह से वसुधा राजवंश ने कभी मेरी मॉम को वापस नहीं आने दिया। इन शॉर्ट, बहुत पुराने हिसाब किताब चुकाने हैं आप दोनों माँ बेटे से, पार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। इन सब में अभिमन्यु की क्या गलती है? किसी भी इंसान को कहाँ पैदा होना होता है ये उसके बस में नहीं होता है। मैंने तुम्हारी मॉम की जगह नहीं ली थी, मेरे खुद के साथ जबरदस्ती हुई थी। अब मैं किसी से बदला लेने के लिए जाऊं? अंजलि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेती हैं आप डॉक्टर चौहान, लेकिन बदला तो आपने ले लिया था। अपने मासूम बच्चे को पहले पैदा करके छोड़कर चली गईं, अपनी लाइफ में अच्छी तरह सेटल हो गईं, लेकिन मेरी मॉम आज भी वहीं पर अटकी हुई हैं। अब तक मुझे कभी अभिमन्यु से सिंपथी नहीं हुई, लेकिन आज आपको देखने के बाद सच में मुझे दया आ रही है, पार्थ ने सिर हिलाकर कहा। तो तुम भी समझते हो कि अभिमन्यु की कोई गलती नहीं थी, फिर तुम उससे बदला क्यों ले रहे हो? प्रशांत राजवंश, वसुधा राजवंश या बाकी लोगों से बदला लो, अंजलि हल्के गुस्से में बोली। वो क्या है ना कि मिस चौहान, राजवंश एम्पायर का सीईओ वही है, तो बदला भी उसी से लिया जाएगा। बाद में मिलते हैं डॉक्टर चौहान, बाकी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा, पार्थ ने मुस्कुराकर आंख मारी और फिर वहां से अंदर जाने लगा। पार्थ का कहना बिल्कुल सही था। अगर अंजलि उनके सामने सबूत भी रख देती तब भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अंजलि ने सिर पकड़ा और कहा, इससे अच्छा मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अगर नहीं आती तो कुछ पता नहीं होता। अभिमन्यु मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन उसकी पत्नी मुझे समझदार लगती है। एक बार उससे बात करने की ट्राई करूंगी। अंजलि वहां से गेस्ट के लिए बने विला के अंदर आ गई तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इशिका को लेकर ऊपर पहुंचा। जब अभिमन्यु ने नक्श को पंच किया था तब उसके कुछ स्टिचेस टूट गए थे और उसे दर्द हो रहा था। ऊपर आते ही अभिमन्यु ने इशिका से कहा, जल्दी मेरा शर्ट निकालो। क्या हुआ अभिमन्यु, तुम रेस्टलेस लग रहे हो, ठीक हो ना? इशिका ने परेशान स्वर में कहा। उसने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा तो वो काफी बेचैन नजर आ रहा था। मैंने नीचे किसी को बताया नहीं, उन्हें बताता तो वे परेशान हो जाते। एक्चुअली मालविका ने मेरे कंधे पर स्टैप किया था, अभिमन्यु ने जैसे ही बताया। इशिका जल्दी से आकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें नक्श को मारने की क्या जरूरत थी, इशिका ने जवाब में कहा। अभिमन्यु का शर्ट निकालने के बाद जब वो उसके पीठ की तरफ गई तो अभिमन्यु के जख्म से खून आ रहा था। इशिका जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और अभिमन्यु का घाव साफ करने लगी। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा अभिमन्यु, घाव से खून नहीं रुक रहा है, इशिका परेशान स्वर में बोली। मैं फैमिली डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वे यहीं आ जाएंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि उनके आने पर सब परेशान ना हो जाएं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम छुपकर उनसे ट्रीटमेंट करवा सकें, अभिमन्यु ने इशिका की तरफ मुड़कर पूछा। कोई तरीका नहीं है। और तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते क्या? बार बार पीछे पलट कर क्यों देख रहे हो, इशिका चिढ़ते हुए बोली। बहुत देर से तुम्हें देखा नहीं है, बस तभी देखने का मन कर रहा है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इस बार वो इशिका के रोकने से भी नहीं रुकने वाला था। फिर उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसके पीछे जख्म से खून निकल रहा था। अभिमन्यु तुरंत इशिका के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अभिमन्यु ने बंद आंखों से कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए परेशान हो गई थी, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ टॉलरेट करना पड़ा। अब मालविका कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। राजवंश फैमिली को मैंने अपने आसपास से हटा दिया है। अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर ऋषिका के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ऐसी ही जिंदगी वो चाहती थी। अभिमन्यु के साथ है खुशहाल जिंदगी जहां उन दोनों की लाइफ में ट्रबल करने वाला कोई ना हो। अभिमन्यु ने अपना वादा बहुत अच्छे से निभाया था। उसने सच में अपने सारे दुश्मनों को उन दोनों की जिंदगी से दूर कर दिया था। इशिका ने अपनी नजरें उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर राजवंश, मुझे एक ऐसी लाइफ देने के लिए जिसकी मैं हमेशा से ख्वाहिश रखती थी। अभिमन्यु ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर इशिका के से अलग होकर काफी इंटेंसिटी से इशिका के होठों को देख रहा था। उसे इस तरह देखता पाकर इशिका की आंखें अपने आप बंद हो गई थीं। अभिमन्यु धीरे धीरे अपने होठ उसकी तरफ बढ़ाता हुआ थोड़ा और करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो इशिका को काफी सॉफ्टली प्यार से किस कर रहा था। वो दोनों पूरी तरह उस लम्हे में खोए हुए थे। किस करते हुए अचानक इशिका का हाथ अभिमन्यु की पीठ से मूव होता हुआ उसके कंधे पर लगे चोट पर पहुंचा, जिससे अभिमन्यु के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। इशिका जल्दी से अभिमन्यु से दूर हुई। पहले इसे ट्रीट करवा लेते हैं, इशिका बोली। ठीक है, लेकिन उसके बाद आज की रात मेरी, अभिमन्यु ने उसके गाल पर अपना गाल रखकर कहा। इशिका ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद अभिमन्यु ने उनके फैमिली डॉक्टर को कॉल करके सीधा वसुधा के विला में आने का कह दिया था। बाकी लोग मेन विला में सेटल हो चुके थे। अभिमन्यु और इशिका अपना सामान लाने के बहाने वहां पर गए, जहां डॉक्टर अभिमन्यु के जख्म को देख रहे थे। घाव थोड़ा गहरा है मिस्टर राजवंश, आपको थोड़े दिन केयरफुल रहना पड़ेगा, हो सके तो अपने हाथ को थोड़ा कम काम में लीजिएगा, डॉक्टर ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा। ड्रेसिंग करने के बाद डॉक्टर जा चुका था। इशिका भी उसके पीछे जाने को हुई, तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया। वे अपने आप चले जाएंगे, उन्हें यहाँ आने जाने की आदत है, अभिमन्यु ने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, पर पहले डिनर कर लेते हैं, तुम आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो, इशिका ने पूछा। अभिमन्यु अपने इमोशंस को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन इशिका समझ ही जाती थी। इशिका ने गहरी सांस ली और अभिमन्यु के गाल पर हाथ रखकर कहा, मुझसे ज्यादा तो तुम डरे हुए हो। हाँ, क्योंकि एक पल के लिए लगा था कि तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, बस दिल को यकीन दिला रहा हूँ हम साथ हैं और सब ठीक है, अभिमन्यु ने शांत इंटेंस वॉइस में कहा। मैं भी काफी डर गई थी, इशिका ने जवाब दिया। इस वक्त अभिमन्यु और इशिका उनके बेडरूम में थे। अभिमन्यु ने इशिका को अपने सीने से लगा लिया और उसके हाथ इशिका की कमर पर मूव हो रहे थे। इससे पहले कि अभिमन्यु अगली कोई हरकत करता, उसे समझते हुए इशिका तुरंत मुस्कुराते हुए उससे दूर जाकर खड़ी हो।
अभी नहीं मिस्टर राजवंश, मुझे भूख लगी है, इशिका ने हंसते हुए कहा। तो अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने हाउस हेल्पर को भेजकर डिनर उनके लिए वहीं पर मंगा लिया था। अभिमन्यु अपने हाथों से इशिका को खाना खिला रहा था। भले ही वो अपने शब्दों से जाहिर ना करे, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा था कि वो फिर से कभी इशिका को देख नहीं पाएगा, बस इसीलिए वो उसे अपनी आंखों से दूर नहीं कर रहा था। अभिमन्यु अपनी तरफ से इशिका को हर तरीके से अडोर करने की कोशिश कर रहा था। इशिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, हमेशा ऐसा बनकर क्यों नहीं रहते हो? मैं तो रह लूंगा मिसेज राजवंश, लेकिन बाद में तुम्हें ही दिक्कत होने लगेगी, बेड से उतरने भी नहीं दूंगा, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर इशिका के गाल लाल हो रहे थे। बात करते हुए अचानक अभिमन्यु का ध्यान इशिका के पेट की तरफ गया। उसकी प्रेग्नेंसी को लगभग 2 महीने पूरे होने वाले थे। इशिका कहीं से भी प्रेग्नेंट नहीं लगती थी। तुम काफी वीक हो, तुमने डॉक्टर से चेकअप करवाया? इन्फ्यूजन की डेट कब है, भूल मत जाना, अभिमन्यु ने काफी केयरिंग वे में कहा। हाँ, मर्चेंट फैमिली के यहाँ से आने के बाद बस एक बार चेकअप करवाया था, उस रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल ही आया था, मुझे लगता नहीं कि किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इशिका ने जवाब दिया। तुम्हारे लगने या ना लगने से नहीं होता इशिका, तुम्हें चेक करवाना चाहिए, हम कल ही डॉक्टर के पास चल रहे हैं, अभिमन्यु बोला। इशिका ने उसकी बात पर हामी भर दी थी। वैसे भी वो चेकअप के लिए जाने ही वाली थी, लेकिन पार्थ का प्रोजेक्ट बीच में आने की वजह से उसे ठीक से टाइम नहीं मिल पा रहा था। इशिका अपना ज्यादातर टाइम पार्थ के प्रोजेक्ट को ही दे रही थी। अचानक बात करते हुए अभिमन्यु के पास एक नोटिफिकेशन आया। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने इशिका की तरफ देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो क्या है, इशिका ने जल्दी से पूछा। मैंने और दिशांक ने तुम्हारी कंपनी को पब्लिक करने की पूरी तैयारी कर दी थी। तुम जिस पेटेंट को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, वो भी हो गया है। यही सही वक्त है सबको बताने का कि तुम ही डॉक्टर मर्चेंट हो। इतना कहकर अभिमन्यु ने अपने मोबाइल में इशिका को कुछ पेपर्स दिखाए। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि अब मुझे सबको बता देना चाहिए। पब्लिक करने से पहले जो भी तैयारी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, इशिका ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं पृथ्वी को एक बड़ी सी पार्टी अरेंज करने का बोल देता हूँ। मीडिया बुला लेंगे, जहाँ पेटेंट से लेकर तुम्हारे डॉक्टर मर्चेंट होने की बात बता देंगे और तुम्हारी कंपनी को भी पब्लिक कर देंगे। कुछ भी करने से पहले अभिमन्यु ने इशिका से पूछा। इशिका को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने हामी भर दी थी।
उल्टा कंपनी के पब्लिक होने बाद वो और लोगों को हायर कर सकती थी। इससे उसका काम ही कम होने वाला था। डिनर हो जाने के बाद अभिमन्यु और ऋषिका इस खबर को बताने के लिए राजवंश फैमिली के पास जा रहे थे कि तभी उनके सामने अंजलि आ गई थी। अंजलि को देखकर एक बार फिर अभिमन्यु का मन कड़वाहट से भर आया था और उसका इतना अच्छा मूड पल भर में खराब हो गया। वहीं अंजलि अभिमन्यु और ऋषिका से पार्थ के इरादों के बारे में बात करने के लिए आई थी। उसने सोच लिया था कि अभिमन्यु उसके साथ कितना भी कड़वाहट से पेश क्यों ना आए, लेकिन वो पार्थ की सच्चाई उसके सामने खोलकर रहेगी। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है, अभिमन्यु अपनी मॉम की सुनेगा? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।